Savior, Om Namah Shivaya, Om Shuddhatmane Namah, Jamjasya Jammirese, Jena Vihanena Jammikalamne, Nadam Jinena Niyadam, Jammam Va Ahava Maranam Va, Santasya Tammirese, తేన విహారేణ తమ్మి కాలం నీ కోసక్కది వారేదుం ఇందో వాతహజి నిందో వా ఏవం జో నిశ్చయదో జానది దౌవాని సౌ అపజ్జాయే సో సద్దిక్షి శుద్ధో జో సంకటి సోహు కో దిక్షి. క్రమబద్ధ పర్యాయ అనుశీలన పుస్తక ఆధార పర్ जैन दर्शन का जो एक महान सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं. पेज नंबर 71 हिंदी पुरानी एडिशन में, गुजराती में कई पेज है, 69. हाँ, नीचे का पैराग्राफ कि यह भावना ज्ञानी की है. कौन सी भावना जो हमने कल देखी थी उसको फिर दोहराते उसके ऊपर क्या करेगा. ये स्वामी जी का विचार यहाँ बता रहे सारे. उसमें हमने क्रम से वो क्या क्या कहते वो देखा था कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले की दृष्टि अपने ज्ञाय सम्मुख हो जाती है. तो नीचे से दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि अहो जिनका पूर्ण ज्ञाय स्वभाव प्रकट हो गया है वे केवल ज्ञानी हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञात होता है. ऐसी प्रतीति करने पर, यानी सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करने पर, स्वयं भी निज दृष्टि से देखने वाला ही रहा. ज्ञान के अतिरिक्त पर का कर्तृत्व अथवा रागादिक सब कुछ अभिप्राय में से दूर हो गया. ऐसे निर्णय होने पर अभिप्राय में से दूर हो जाते हैं. अब प्रवृत्ति में से या राग अभी है बाकी, उसकी पर्याय में से दूर नहीं हुए नहीं है, अभी राग भी बाकी है, परंतु उस संबंधी जो कर्तृत्व का अभिमान था, जो मिथ्यात्व था, वो दूर हो गया. मिथ्यात्व का दूर हुआ, अज्ञान दूर हो गया. फिर भी अभी राग द्वेष कुछ काल तक होते रहेंगे, परंतु अभी उसका स्वामित्व अपना नहीं, उसका कर्तृत्व अपना नहीं है. तो क्या कहते कि अभिप्राय में से दूर हो गया. अभिप्राय में से दूर यानी सम्यक दर्शन प्रकट हो गया. ऐसी द्रव्य दृष्टि के बल से, ज्ञान की पूर्णता की भावना से वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है. तो अभी सम्यक दृष्टि हो गया तो द्रव्य की दृष्टि उसको आ गई. अब उस दृष्टि के बल से वो अभी भावना क्या करेगा, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरे पुत्र पौत्र अधिक मिल जाए, संपत्ति बढ़ जाए, ऐसी भावना नहीं. भावना किसकी होगी अभी उसको, जिसे अपना स्वभाव पता चल गया है, ज्ञायक भाव का पता चल गया है, अपना अनुभव कर दिया है उसने, उसको तो ज्ञान की पूर्णता की भावना होती है. ज्ञान की पूर्णता ये क्योंकि सर्वज्ञ स्वभाव का उसने निर्णय किया है. जिस स्वभाव का निर्णय किया है वो स्वभाव की जो पर्याय में जो प्रकट होना है पूर्ण रूप से, उसको कहते ज्ञान की पूर्णता. वो तो स्वयं तो ज्ञान रूप अपने को अनुभव कर ही रहा है, परंतु ज्ञान तो यानी दृष्टि में श्रद्धा का विषय है अहम स्थापित करना. तो अहम किसमें हुआ, स्वभाव में. स्वभाव है केवल ज्ञान स्वरूप, परंतु ज्ञान जान रहा है कि अभी पर्याय में अल्पज्ञता है. तो वो पर्याय में अल्पज्ञता है, तो जैसा स्वभाव है तो स्वभाव के लक्ष्य से पर्याय में भी सर्वज्ञता प्रकट होती है, तो उसकी भावना उसको बनी रहती है. अब ऐसा नहीं सोचते कि हमारे पड़ोसी को बहुत पैसा मिल जाए, उसके घर में ऐसा हो जाए, उसकी समृद्धि हो जाए. अज्ञान अवस्था में किसकी सोचते, अपने घर में हो जाए, अपने लिए सारा सोचते ना कि हमारा ऐसे सुख समृद्ध हो जाए. वैसे अभी सम्यक दृष्टि को मैं कौन हूँ पता चल गया, तो अभी ये संयोग में इतनी बातें हो जाए शरीर में ऐसी ऐसी बातें हो जाए, ऐसी भावना नहीं रहती, ऐसे विचार ऐसा राग हो सकता है, आता है गृहस्थ अवस्था में हो तो गृह संबंधी उसको कुछ विचार आएंगे, अभिप्राय में से निकल गया, क्योंकि अभी उसका अपना तो पूरे पूरा जो अपना गया एक भाव है, जो स्व जो वह सचमुच जो स्व है उसमें उसका अपनत्व आ गया, इसलिए उसको ज्ञान की पूर्णता की भावना होती है। और उस भावना के साथ वो चिंतन किसका करता है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। वस्तु स्वरूप क्या है, अभी हम वस्तु स्वरूप का चिंतन क्रमबद्ध पर्याय की ओर से कर रहे हैं, उसमें पांच समवाय कैसे होते हैं, निमित्त उपादान में किससे कार्य होता है, ये छह द्रव्य सात तत्व जो है नौ पदार्थ है वो कैसे कैसे है, सात तत्वों का जो जो का क्यों सिद्धांत कैसा, इस समय ये सारा ही वस्तु स्वरूप संबंधी उसका चिंतन चलता रहता है। यह भावना ज्ञानी की है, ये अभी आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि यह भावना ज्ञानी की है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की नहीं है। ज्ञानी की तो भावना की अपना ज्ञाय स्वभाव में पूर्णता लीन हो जाऊं मैं और वो ज्ञान पूरे पूरा प्रकट हो जाए, यानी उसको तो लीनता के अपने आश्रय की भावना है, वो पर्याय की भी भावना नहीं, उसको कहेंगे तो ज्ञान की पूर्णता की भावना है, परंतु पूर्णता की यानी जो परिपूर्ण ज्ञाय स्वभाव है उसमें ही वो अपनत्व है, तो यह मैं हूँ इस रूप से उसका हमेशा चिंतन चलता रहता है, उसकी भावना बनी रहती है। अब अज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि है उसको कौन कौन सी भावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि उसको तो अपने ज्ञाय भाव का तो पता ही नहीं है, उसका तो पूरा ही लक्ष्य पर पदार्थ की ओर है, तो उसको किसी की पर्याय फेरफार करने की भावना रहेगी, कुछ संयोग प्राप्त करने की भावना होगी, या जो अनिष्ट रूप कोई चीज है उसको दूर करने की भावना बनी रहेगी, उसी के संबंध में चिंतन करता रहेगा। अभी तत्वार सूत्र में बात आती है ना आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, जिसको कुध्यान कहा है, तो मिथ्या दृष्टि वो समय दृष्टि को हो सकता है तो समझते, परंतु मिथ्या दृष्टि का कैसा पूर्णतः आर्द्र रौद्र ध्यान ही है, उसको अन्य कोई ध्यान नहीं है, कैसे तो चिंतन कैसा करेगा दिन भर, यानी ज्ञानी की चिंतन कैसा है यहाँ कि पूर्णता की भावना से वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है, और अज्ञानी चिंतन कैसे करेगा कि अनिष्ट दूर कैसे हो, इष्ट को मैं कैसा लाऊं, अरे ये बहुत रोग है बार बार अभी किसके रोका जाना कौन से रहने, उसके के बारे में दिन रात सोचता रहेगा, या आगामी भविष्य संबंधी कुछ न कुछ प्लानिंग चलती रहेगी उसको, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, ये लाना है वो जुटाना है, ऐसे ऐसे ये सारे ये अज्ञानी की जो बातें चल रही है, तो उस संबंधी उसका चिंतन चलता रहेगा, वो हुआ आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान में ये जो सभी पाप करके उसमें आनंद मान रहा है और उसी की भावना बनी रहेगी, परिग्रह जुटाकर उसमें आनंद मान रहा है और हमेशा भावना भी उसको परिग्रह जुटाने की रहेगी, वैसे सारे समझना, वो शाम को विषय चल रहा है ना रौद्र ध्यान में, चार प्रकार देखे थे, कौन से चार प्रकार याद है, पापों के नाम गिना और उसमें आनंदी लगाओ आगे, हिंसा नंदी, नंदी नहीं लगाना आनंदी, हिंसा में आनंद मानने वाला वो हिंसा नंदी, फिर चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी और मृषानंदी, मृषा यानी असत्य, तो वो रौद्र आर्द्र और रौद्र ध्यान करता रहेगा अज्ञानी। देखो यह भावना ज्ञानी की है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव पर का कर्तृत्व मानता है और कर्तृत्व की मान्यता वाला कर्तत्व हुआ है, कर्तृत्व की मान्यता वाला नीचे ऐसा रू लगाना उसको कर्तृत्व, सेकंड लाइन में आखिर में जो शब्द है ना कर्तत्व हुआ है वो कर्तृत्व करना, कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता। देखो क्या कहते हैं बहुत जरा इम्पोर्टेंट है, मिथ्या दृष्टि क्या मान रहा है, मैं परका कर सकता हूँ और परका करना मेरा कर्तव्य है, तो कर्तृत्व की भावना है उसकी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की, वो परका कर्तृत्व मान रहा है अपने को परका कर्ता मान रहा है, और कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव जिसको कर्तृत्व की मान्यता है उसको ज्ञातृत्व की मान्यता नहीं रहेगी, उसमें उसको ज्ञातापन नहीं आएगा, जब तक कर्तापन है तब तक ज्ञातापन नहीं आएगा, ज्ञातापन आते ही कर्तापन की भावना उसकी छूट जाएगी, कर्तृत्व बुद्धि जिसको कहा है। हाँ, सम्यक दर्शन होते ही वो ज्ञाता, उसका ज्ञातापना प्रकट हो जाएगा, कर्तापना, करने का भाव आएगा, करने का राग अभी भी आएगा, परंतु अभी ना उस राग का स्वामी है और ना करने धरने का अभिप्राय है। तभी ऊपर हमने पढ़ा था कि अभिप्राय में से सब दूर हो जाते हैं, रागादिक है वो अभिप्राय में से चले गए। अभिप्राय ऐसा नहीं है कि रागादिक करने जैसे है और मैं ये कर रहा हूँ, अभिप्राय में से छूट गए, यानी वहाँ तो दृष्टि मोक्ष हुआ कहते हैं उसको, सम्यक दृष्टि हुआ ना, तो श्रद्धा अपेक्षा मोक्ष वहाँ प्रकट हो गया। अभी तो पर्याय में सारा प्रकट होना बाकी है, फिर भी सम्यक दर्शन होते ही कह दिया ये दृष्टि मोक्ष हो गया इसको। देखो क्या कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है, पर का कर्तृत्व मान रहा है, कर्तृत्व बुद्धि है, बुद्धि है ने वो मान्यता को दर्शाते, कर्तृत्व बुद्धि में मिथ्या मान्यता है, तो कर्तृत्व मानता है और कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। तो प्रश्न क्या पूछते हैं लोग कि जब तक हमको सम्य दर्शन नहीं होता तब तक हम करेंगे कि नहीं करेंगे, शुभ भाव करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, हम प्रचार प्रसार में जुड़ जाए कि नहीं जाए, यानी वो क्या मानता है, वो कर्तृत्व मानता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी ये सारी बातें चलती रहेगी, परंतु वो ज्ञाता भाव रहेगा उसको, उसको अपना कर्तृत्व नहीं मानेगा, मान्यता में फेर है, दोनों की क्रियाएं एक जैसी दिख रही है, दोनों के राग एक जैसे दिख रहे हैं, एक को राग का स्वामीपना है और एक को राग का स्वामीपना नहीं है, वो सहज ज्ञाता भाव उसका, उसके साथ साथ जो जो क्रियाएं चल रही है उन क्रियाओं के साथ उसका ज्ञाता भाव चल रहा है, करने में उसने कोई फर्क नहीं पड़ा, बाह्य में तो वैसा ही दिख रहा है जैसे कल हो रहा था वैसे आज हो रहा है, अभी सम्यक दर्शन होने के पश्चात उसकी क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है अन्य लोगों को, तो उसको अपने ख्याल में है कि ये सारा अभी ज्ञाता रूप से उसको चल रहा है, पहले कर्ता मान रहा था वो, अब ये मानने तक छूट गई। 72 पेज। सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा है वही होता है, यदि हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता, इस प्रकार जो मानते हैं वे अज्ञानी है। अभी अपनी मान्यता कहाँ है वो देख लेना, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि पुरुषार्थ क्या है मालूम नहीं था पहले, और हम करेंगे सोच समझ कर तो ही होगा कार्य, नहीं तो जो हमारे सारे ही अनंत गुणों के कार्य चल रहे हैं क्या ये बिना पुरुषार्थ के हो रहे हैं, हम कुछ सोच समझ कर उसमें पलटाना चाहते हैं और वो उसी को पुरुषार्थ मानते, ये पुरुषार्थ संबंधी हमारी गलत मान्यता है, वस्तु स्वरूप संबंधी गलत मान्यता तो है ही है, परंतु क्रमबद्ध पर्याय जब हम सीखते हैं तो पुरुषार्थ अपना उड़ गया ऐसा लगता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी किसे कहना इसका पता नहीं, इसमें तो इसमें पुरुषार्थ नहीं होता, उड़ता ही है, सही पुरुषार्थ होता है, क्योंकि मान्यता हमने अपनी सही कर ली, अनंत काल में जो अनादि से जो कार्य नहीं हुआ था वो अब हुआ तो ये अनंत पुरुषार्थ हुआ, पुरुषार्थ उड़ा नहीं है, सर्वज्ञ ने क्या किया उसने, कुछ नहीं किया, उनकी ज्ञान की ऐसी पर्याप्त प्रकट हुई थी कि उन्होंने अनंत काल पहले जान लिया था कि इस जीव को अब यहाँ सम्य दशा हो रहा है, अभी इस जीव को अब ऐसी मुनि दशा होगी और ये जीव इस समय विशिष्ट समय में मोक्ष चला जाएगा, उन्होंने जाना, इसलिए हमारे हम पुरुषार्थ ही नहीं होगा, उसके कारण तो ज्ञान की महत्ता आनी चाहिए, अरे अभी हमने किया भी नहीं और उन्होंने जान लिया कैसे जाना, तो ज्ञान की ही ऐसी विशेषता है कि वो भूत भविष्य या जो सामने हो रहा है या अन्य कहीं जगह हो रहा है उसको भी अपने सामर्थ्य से जान ले, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है, तो ये जानकर हमें अपने पुरुषार्थ उड़ जाने का भय लगता है, परंतु दृष्टि ने कहाँ चले जाने चाहिए, ज्ञान स्वभाव पर, अरे ज्ञान ऐसा है इतना महान है कि एक समय में ये सारा जान ले, दूसरे भी जीवों का और अपना भी खुद का, तो ये ज्ञान का महात्म्य आता है, और तभी अपना ज्ञान स्वभाव तो है मालूम है कि हमारा तो हमें तो ज्ञान कर रहे हैं हर समय ज्ञान 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 चल रहा है, तो अपने स्वभाव का पता चलता है और स्वभाव की ओर दृष्टि हो जाती है, और ज्ञान जो अपने स्वभाव को पकड़ लेता है, यानी इसमें हमने क्या किया, इसे उपयोग को खींच खींच के लाना पड़ेगा अपने ओर। सहज ज्ञान स्वभाव का पता चल गया और ज्ञान ने अपने स्वभाव को पकड़ लिया। ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा था आज तक, ये क्यों नहीं होता है? देखो सामने कोई चीज रखी है, गुलाब जाम रखा है, तो उसका स्वाद कब आएगा? चखे देखते हैं आप तो स्वाद आता है। अन्य कोई यहाँ स्पर्श की बात की, कोई चूह है पिंच, उसका स्पर्श होगा तो उसका उस संबंधी ज्ञान भी होगा। वैसे आत्मा का ज्ञान करना है तो क्या करना पड़ेगा? उपयोग में जो हम अन्य तरफ उपयोग लगाते थे तो ये परवस्तु होते हुए भी उस संबंधी ज्ञान हो जाता। तो अभी उपयोग आत्मा में तो कहीं बाहर से लाना नहीं है और ये अंदर से बाहर नहीं डालना है, आत्मा स्वयं ही उपयोग स्वरूप है। देखो परवस्तु को भी आत्मा जान लेता है ये तो कितनी महानता है, और अपने को न जाने ऐसा हो सकता है? तो ज्ञान तो स्व प्रकाशक है, वो अपने को तो जानता है, ऐसे उसने पड़ी है सामर्थ्य पूरी। तो बात इतनी सी थी कि उपयोग जो पर तरफ लगता था तो पर को जानता था, उसी समय उसी पर्याय में अपने को जान रहा है। देखो ये वस्तु मेरे ज्ञान में आ रही है, किसके ज्ञान में आ रही है? मेरे, आपने कहा मेरे, दीपाली के ज्ञान में आ रही है ऐसा नहीं कहा आपने, तो मेरे ज्ञान में आ रही है। तो मैं ऐसा एहसास हुआ कि नहीं हुआ? किसी चीज को जानते समय यह मेरे ज्ञान में आ रही है ऐसा जो हमें प्रतीत होता है, यानी अपनी प्रतीति हमेशा चलती रहती है। परंतु ये स्व क्या है इसका निश्चय अज्ञानी को नहीं है, ये शरीर को ही स्व माना है और इसलिए ये सारी भ्रांति चली। तो ये जिसके ज्ञान में आ रहा है ये कि ज्ञान है, तो ज्ञान ही मैं हूँ। कल बात आई थी वो पंचाध्यायी में, एक गुण की अपेक्षा उसमें आप भेद कर सकते हैं, एक ज्ञान है, ये अनंत गुणों में से ज्ञान है, परंतु पूरे आत्मा को भी ज्ञान कहा जाता है। तो वो गुण के द्वारा पूरा आत्मा हमारे ख्याल में आता है, ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान स्वभाव आत्मा का है। तो ये ज्ञान स्वभाव अन्य अनंत गुणों से भिन्न है कि उसी का पूरा एक है, एक पिंड है ना, वो अभेद है आत्मा। तो एक स्वभाव के द्वारा, एक ज्ञान के द्वारा हमने पूरे आत्मा को पकड़ा। अब ये दृष्टि में एक गुण को लेना या पूरे को लेना, ये हमारे अपनी सामर्थ्य है। तो पूरे ही को, पूरी वस्तु को, पूरे अपने आप को जानना, वही तो है सम्यक दर्शन। ये सारा कार्य ज्ञान के द्वारा ही होगा और अनुभव होगा, आत्मानुभव होना ये भी ज्ञान की पर्याय है। और उसी समय सम्यक दर्शन होता है तो उससे पता चलता है कि हमको अभी सम्यक दर्शन हो गया। तो जब आप जैसे परद्रव्यों की तरफ उपयोग लगाते हैं तो उसका संबंधी ज्ञान होता है, तो उपयोग आत्मा को पकड़ेगा तो आत्मा का ज्ञान पर्याय में हो जाएगा। और उपयोग आत्मा की तरफ कैसे ले जाना, तो वो अपने समझ सोच कर राग द्वारा नहीं हो सकता। हमको अभी आत्मा की तरफ उपयोग ले जाना है कैसे नहीं जाएगा, कब जाएगा? जिस चीज की महानता भाषित होती है उपयोग बार बार वहाँ जाता है। जब अपने ज्ञायक स्वभाव की महानता सबसे उच्च, इस विश्व में सबसे महान मेरा ज्ञान स्वभाव है ऐसा जब पता चलेगा, ऐसा जब अंदर से आपको प्रतीति होगी, तो उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर चला जाएगा और आत्मा का अनुभव होगा। इतना सिंपल, इतना सहज है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इतने शास्त्र पढ़ेंगे हम तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसे उसमें कोई रुकावट नहीं है। सच्ची समझ चाहिए। देखो अभी पढ़ा ना हमने, उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता, इस प्रकार जो मानते हैं अज्ञानी है। हे भाई तू किसके ज्ञान से बात करता है, अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान से? ये बात आई ना, ये सारा जो हम बातें कर रहे हैं या जो कोई विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो किसके ज्ञान की बात है? ये अपने ही ज्ञान से बोल रहे हैं ना। अज्ञानी भी उसके अपने ज्ञान से ही चल रहा है, उसको वो पता नहीं, उसका लक्ष्य दूसरे की ओर है, मान्यता में वो सारा गलत चल रहा है उसके, परंतु उसके भी अपने ही ज्ञान से वो चल रहे, अपनी बुद्धि से काम चल रहा है ना उसका भी। तो क्या कहते कि तू किसके ज्ञान से बात करता है, अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान से? यदि तू अपने ज्ञान से ही बात करता है तो फिर जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया, उस ज्ञान में स्वद्रव्य का निर्णय न हो यह हो ही कैसे सकता है? अभी हमने बात किया जब पर का निर्णय करता है वो स्व का न करे ऐसी कैसी बात हो सकती है। ये सामने चीज है, ये हरे रंग की है, ये चौकोनी है, ये प्लास्टिक की है, ये हल्की है, ये किसने जाना? ज्ञान ने इसका निर्णय किया। तो जो ज्ञान इसका निर्णय कर सकता है वो अपना खुद का न करे ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात, ये वाक्य फिर पढ़ेंगे। देखो कि जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया। अभी हमने सर्वज्ञ का निर्णय कर लिया कि सर्वज्ञ ऐसे तीन काल तीन लोक के सभी द्रव्यों के सभी गुणों को उसके परिणाम को जानते। ये शुद्ध ज्ञान में हमने सुना आगम से और हमने उसमें जान लिया। पहले नहीं जानते थे, बच्चा नहीं जान रहा था। अभी हम जान रहे कि नहीं जान रहे? सर्वज्ञ नाम की कोई चीज है, कोई सर्वज्ञता नाम की पर्याय है, ये तो जान रहे ना। तो ये जान रहे तो श्रुत ज्ञान के द्वारा हमने इसको जाना। तो जो सर्वज्ञ को जाना, सभी द्रव्यों को जाना। इस विश्व में कितने द्रव्य है भाई? छह द्रव्य और संख्या अपेक्षा अनंत है। तो हमने अनंत द्रव्यों को जाना। अभी प्रत्यक्ष ज्ञान की बात नहीं है, आगम द्वारा भी जानना वो भी जानना कहलाते हैं, क्योंकि आगम भी प्रमाण है। सर्वज्ञ देव ने बताया, सर्वज्ञ देव ने प्रत्यक्ष देखकर बताया, प्रत्यक्ष जानकर बताया, और हमने आगम द्वारा जाना उसको। जैसे मैंने आपको पूछा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है? इतना इतना है। अच्छा, आपने ब्लड रिपोर्ट कराई तो उसमें ब्लड शुगर कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है? हाँ, इतना इतना है पक्का। कैसे जाना? आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो नहीं था वो? केमिस्ट्री के द्वारा ब्लड शुगर तो आपने अजमाई नहीं थी कितनी है, तो कैसे जाना? वो तो उन्होंने स्वयं जांच करके जिन डॉक्टर ने पता लगा जिसने लिख के दिया उस पर ही हम भरोसा कर लिया और हम पक्का मान लेते कि ये मेरा रिपोर्ट है। वहाँ तो पूरा 100% गारंटी है। उतना विश्वास हमको आगम पर नहीं है अपनी ना। पेपर में कुछ छप के आए तो हाँ, एक दूसरे को भी उसकी बातें बताते रहते, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, परंतु आगम में ऐसा है वो कभी हाँ हाँ होगा, शायद होगा, वो तो लिखा है तो हो सकता है, तो उस पर हमारा भरोसा नहीं है। तो ये आगम जो है सर्वज्ञ देव ने जो स्वयं जानकर वहाँ बताया है, वो आचार्य ने उसकी रचना की है, तो वो परम सत्य है, इसको प्रमाण कहते हैं। और हमने आगम से जो जो बातें जानी है वो भी प्रमाण है। तो ऐसा नहीं समझना अकेला ये शास्त्र का ज्ञान है वो जीता, ऐसे कोई नहीं समझना, क्योंकि ये सर्वज्ञ की बात है, सर्वज्ञ का ये उपदेश है। अभी हमने उसमें से जाना, इसलिए यहाँ क्या कहा रहा है कि जिसने सर्वज्ञ को जाना और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया। हमने निर्णय किया है, हमने सभी अवस्थाओं को जाना, ऐसा नहीं कहा कि सभी जो सभी द्रव्यों की सभी अवस्थाएं विशिष्ट निश्चित क्रम से ही और जो होने योग्य है वे ही, जिस समय होगी उसी समय, जिस पुरुषार्थ यानी जिस विधि पूर्वक होगी वही उसी द्वारा, जिस निमित्त से होगी उसी द्वारा, पांचों समवाय सहित होती है, ऐसा जब हम निर्णय करते हैं। देखो, जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का निर्णय किया और जिस ज्ञान ने क्रमबद्ध का निर्णय किया, वह ज्ञान क्या कहते हैं? देखो, जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया, सभी द्रव्यों की अवस्था नहीं है क्रमबद्ध, सभी द्रव्यों की अवस्थाएं क्रमबद्ध होती है, ऐसा जिसने निर्णय कर लिया, उस ज्ञान में स्वद्रव्य का निर्णय न हो यह हो ही कैसे सकता है? स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। देखो, है तो सहज और सबसे आसान बात, जो परद्रव्यों की सभी निर्णय कर सकता है, घर में क्या कैसा लाना क्या लाना वो सारा निर्णय करे और अपना निर्णय नहीं करे, कैसे वो तो सबसे सरल बात है। परंतु अनादि से उस तरफ हमने कभी झांक कर देखा नहीं था, न उसको सबसे निर्णय पूर्वक सुना था, इसलिए उस संबंधी हम अज्ञानी रहे। तो इसलिए कहते क्या है कि स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। जैसे मनुष्य पर्याय की बात करते कि मनुष्य पर्याय पाना अत्यंत दुर्लभ बात है। अब इतनी अत्यंत दुर्लभ बात हमने प्राप्त की है तो अभी समय दर्शन प्राप्त करना, उसमें भी आते हैं ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, वो जिन धर्म यानी जैन धर्म का अनुयायी हो, अनुयायी हो नहीं उसमें मान्यता रखने वाला हो, सच्चा उपदेश सुनने वाला, क्योंकि जैन धर्म में भी आकर वो अनेक अन्य अन्य मत मतांतर चलते हैं उसमें भी। कोई तो शासन देवताओं को मानने लगते हैं, कोई किसको पूजने लगते हैं, कोई अपने मन घड़ंत कुछ कुछ बातें चलती रहती है। हमें तो सच्चा उपदेश प्राप्त तो हुआ है, तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना सरल है, कुछ नहीं उसमें, कोई रुकावट अभी नहीं है। कहते हैं पूरा अवसर आ गया है, और ऐसे वक्त में अगर नहीं करे तो हमारे जैसे दुर्भाग्यशाली हम ही है। और ऐसा नहीं समझना ये बहुत टॉप की बातें करे, ये तो पहला अभी अगला कदम रखने की बात है। किसी से बात करे वो समझ, वो तो अगले बहुत ऊंची बात, वो ऊंची बात करे मत, ऐसा नहीं है, वो ऊंची बात नहीं है, वो हमारे अभी इसी समय करने की बात है। और वो क्या है, सर्वज्ञ का और क्रमबद्ध का निर्णय करते ही अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय उसी में गर्भित हो जाता है। अभी मुझे मेरा निर्णय करना है, मेरा निर्णय करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव और मैं भी अपने ज्ञान स्वभाव में हूँ। स्वभाव हमें पैदा नहीं करना है, क्यों नहीं पैदा करना है स्वभाव, वो स्वतः सिद्ध होता है, अनादि से है। वो स्वभाव हमारा कोई मिटा नहीं सकता, तो क्या करना, अभी अकेले उसकी दृष्टि करना, जिस संबंधी अभी पता नहीं था अब पता चल गया, क्योंकि जिनेन्द्र का उपदेश मिल गया है तो पता चल गया, तो बस अभी इसका निर्णय करते रहो, सर्वज्ञता और क्रमबद्धता या अपने ज्ञान स्वभाव का, ऐसी बात है, उसमें कोई अलग दो चीजें नहीं है। सात तत्वों में भी कहते हैं ना कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो या सात तत्वों का करो, एक ही बात है, क्योंकि एक के श्रद्धान में दूसरे का श्रद्धान गर्भित होता है, तो इनका निर्णय करते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देखो स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है, और यही अनंत पुरुषार्थ है, और दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना, तो निर्णय करते ही उपयोग अपने को पकड़ लेता है, उसके लिए कोई दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं। तूने अपने तर्क में कहा है कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा होता है, तो वह मात्र बात करने के लिए कहा है, अथवा तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है, ये स्वामी जी की बात चल रही है सारी। स्वामी जी ने जो प्रश्न करता है उसको ये जवाब नहीं दिया है, क्या कहते हैं कि जो सर्वज्ञ की बात करते हैं, केवल ज्ञानी में जो आया है वो वैसा ही होगा, या जो क्रमबद्ध है वैसा ही होगा, ऐसा जो कहते हैं उसको कहते हैं कि पहले तुझे सर्वज्ञ का निर्णय है, उनकी श्रद्धा है, क्या अकेले बात करने के लिए बताता है, जैसे अन्य मते कहते हैं ईश्वर ने, ईश्वर की इच्छा अनुसार हो जाएगा, भगवान ने जैसा देखा वैसा हुआ, या जो होनी है वैसा, यानी अकेला वो एकांतवाद जो है, नियतवाद, वहाँ तो वो ईश्वर को कर्ता वाले मानते, वो तो मिथ्या मान्यता है ही है, परंतु अकेले नियति से जो होना है, जो अपने भाग्य में होना है, उतना एक ही को पकड़ कर जो चलते है, तो उनके लिए वैसा ही हुआ। ये भी जो जैनी होकर भी क्या मानता है, जैसे केवल ज्ञान में आया वैसा होगा, तो उसको पूछते हैं क्या तूने केवल ज्ञान का सही निर्णय कर लिया है, क्या अकेले तीन काल तीन लोक को जानता है वो सर्वज्ञ इतना ही है, क्या उसका स्वरूप भी कुछ प्रकाशित हो रहा है, तो उसको कहते तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है। पहले तो यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर, सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो पहले केवल ज्ञान का निर्णय कर कहते हैं। और यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता हो तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के निर्णय वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ आ ही जाता है, वही अनंत पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान के ज्ञान का निर्णय करना कहो या ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना कहो, वो तो केवल ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान स्वभाव में से ही प्रकट हुआ, तो पूरा पूरा वहाँ स्वभाव है ना, तभी वो पूरी पूरी पर्याय प्रकट हो गई, तो स्वभाव में से पर्याय प्रकट हुए, तो ये स्वभाव मेरे पास है कि नहीं है, ये वो प्रकट करना है। जब भी केवल ज्ञान हुआ तभी स्वभाव प्रकटेगा कि अभी इस वर्तमान में ये स्वभाव प्रकट है, प्रकट है स्वभाव, प्रकट है, पर्याय प्रकट नहीं है, स्वभाव विद्यमान है, तो वो विद्यमान है जो है उसका निर्णय करना है, उसको जानना है, क्या हम इसको जानते हैं क्या करते हैं? हमको आत्मा को जानना है तो हम इस पदार्थ को जानते हैं, तो हमने क्या किया? इसको जानना है, क्या किया? इसका निर्णय ही तो किया ज्ञान में, ऐसा निर्णय हुआ कि ये प्लास्टिक की चीज है, ये टोको नहीं है, ये इसमें डेढ़ इंच बाय डेढ़ इंच है, ये बहुत लाइट है, ग्रीन कलर की, ये निर्णय ही तो किया। और क्या किया? यही तो जानना है ना। अभी इस समय तो हम तो निर्णय ही करते नहीं, जानते नहीं क्या करते। किसी विशिष्ट वस्तु संबंधित पूरा निर्णय हमको हो जाता है तो हम उसको जानना कहते हैं। तो ये जो है आत्म स्वभाव का निर्णय करना है, तो ऐसा कहो कि सर्वज्ञ का निर्णय या ऐसा कहो कि अपना निर्णय, एक ही बात है। इसलिए प्रवचन सार में भी जो जान लिखा है ना, जो जान लिया अरहंतम दौवत्त गुणत्त पर्यायवत्तम, यानी वो द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जो अरहंत को जानता है उनका मोह नष्ट हो जाता है, यानी उनको सम्यक दर्शन होता है। कैसे? यहाँ भी क्या बात है, जो सर्वज्ञता निर्णय करता है वही अनंत पुरुषार्थ है, और उसमें अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय है। यानी अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय कहो या सर्वज्ञता निर्णय कहो या क्रमबद्ध का निर्णय कहो, एक ही बात है। एक का निर्णय करते ही सारा हो जाता है। सर्वज्ञता निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है, तथापि उससे इनकार करके तू कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ कहाँ रहा? देखो अकेला क्या किया, सर्वज्ञ का निर्णय किया, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया उसने, सच्चे अपने बुद्धि से उसको माना सही रूप से, तो वो निर्णय करना ही अनंत पुरुषार्थ है। और ये क्या मानता है, क्रमबद्ध पर्याय मानने से हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? वो मानना इटसेल्फ अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि ज्ञान ने ये काम किया ना। अनादि से जो नहीं काम हुआ था वो ज्ञान ने अपने वीर्य से किया, यानी वो वीर्य है ज्ञान, वो सारा एक अभेद द्रव्य ही तो है ना। तो ये ज्ञान ने ये कार्य किया, यही तो उसका अनंत वीर्य है। वो भगवान का अनंत वीर्य वो बात नहीं है, अभी हमारे ज्ञान ने इसका निर्णय किया। तो अभी वर्तमान में जिस ज्ञान ने इसका निर्णय किया उसको भी कहते ये अनंत कार्य हुआ, ये अनंत वीर्य हुआ। वो भगवान वाला अनंत नहीं, वो अनंत के भी अनंत भेद है ना। तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसने भी ये अनंत पुरुषार्थ किया कहते। तो देखो क्या कहा, कि सर्वज्ञ का निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है, परंतु उसका तो इनकार करता है अज्ञानी जी, तथापि उससे इनकार करके तू कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ कहाँ रहा? क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना यही अनंत पुरुषार्थ है। देखो सच तो यह है कि तुझे पूर्ण केवल ज्ञान के स्वरूप की ही श्रद्धा नहीं है, और केवल ज्ञान को स्वीकार करने का अनंत पुरुषार्थ तुझ में प्रकट नहीं हुआ है। ये बोलने के लिए बोलता है केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसे होगा। देखो केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा होकर करके निछल्ला बैठने वाला पुरुषार्थहीन व्यक्ति होता है, और केवल ज्ञान ने जैसा देखा वैसा होगा, जब केवल ज्ञान कहते हैं तो केवल ज्ञान की जिसको महत्ता आती है उसका निर्णय हो जाता है, वो तो ऐसा होता ही नहीं उसको कि उसका पुरुषार्थ न करे। वो वितरागी और सर्वज्ञ का स्वरूप अपने ख्याल में आते ही उसका काम बन जाता है, तो उससे सच्चे दिल से भी उसने उसका स्वरूप का भी निर्णय नहीं हुआ। ये अकेले शास्त्र ज्ञान या शब्द ज्ञान से कुछ नहीं चलेगा, ये सारा अपने निर्णय में होना चाहिए। देखो केवल ज्ञान को स्वीकार करने का अनंत पुरुषार्थ तुझमें प्रकट नहीं हुआ, केवल ज्ञान को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व आ जाता है, तथापि यदि उसे स्वीकार नहीं करता तो कहना होगा कि तू मात्र बातें ही करता है किंतु तुझे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ। यदि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की और भव की शंका न रहे। सर्वज्ञ का निर्णय यही सेल्फ अनंत पुरुषार्थ है। तो सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की शंका नहीं रहती कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा, ऐसी शंका नहीं रहती, और भव की भी शंका नहीं रहती, मेरे बहुत भव बाकी हो गए और क्या होगा मेरा, ऐसा विचार तक नहीं आता। यथार्थ निर्णय हो जाए और पुरुषार्थ न आए यह हो ही नहीं सकता। पहले अपने उत्तर आ रहे, स्वामी जी बोल रहे सारे अपने प्रश्न, उनको पता चल गया तो पहले क्या कहते कि यथार्थ निर्णय हो जाए और पुरुषार्थ न आए यह हो ही नहीं सकता। यथार्थ निर्णय सेल्फ अनंत पुरुषार्थ है, तो निर्णय में ही पुरुषार्थ आ जाता है। गहराई से विचार करे, यहाँ तक तो स्वामी जी का ये सारा ही कोटेशन दिया है, उन्होंने जो प्रवचन में बताया था ये सारा यहाँ लिखा है। गहराई से विचार करे तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। यही बात अभी कहती हूँ, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है, गर्भित है, उसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि क्रमबद्ध का सबसे हेतु जिसको कहते हैं प्रूव करने के लिए जो पॉइंट है सबसे पहला और महत्व का, वो तो है सर्वज्ञता। इसलिए क्रमबद्ध के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय भी समाहित है, इसी में इंक्लूडेड है। जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति, प्रतीति यानी आस्था के बिना कि उसका अस्तित्व है ऐसे की हमें गारंटी हो जाती है अंदर से, उसके बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय संभव नहीं है। यानी बिना सर्वज्ञता माने हुए क्रमबद्ध पर्याय जैसे हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं, उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय के सम्यक निर्णय बिना सर्वज्ञता की भी सच्ची प्रतीति संभव नहीं है। देखो क्रमबद्ध पर्याय किसने देखा, तो सर्वज्ञ के ज्ञान में आ गई कि ये सारी वस्तुएं सही है, तभी क्रमबद्ध है कि नहीं है तो उसके लिए हमको सर्वज्ञ का दाखला देना पड़ता है। सर्वज्ञ है और उन्होंने जाना है और इसलिए क्रमबद्ध भी होता है। अभी जो सर्वज्ञ का ज्ञान ही जिसने सही रूप से नहीं माना, वो क्या कहता है, वो भविष्य को नहीं जानते या ऐसा सशर्त जानते, कंडीशनल जानते, कैसे कि जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, तो इस तरह का उनका कंडीशनल नहीं है, वो जैसा है वैसा ही पूरा पूरा जानते। तो उसमें क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ के निर्णय में क्रमबद्ध का निर्णय आ जाता है और क्रमबद्ध के निर्णय में सर्वज्ञ का निर्णय आ जाता है। अब रही परकर्तृत्व के अहंकार की बात, जिसे यह अज्ञानी जगत पुरुषार्थ माने बैठा है। ये तो हमारा, हम पुरुषार्थ किसके मानते हैं, पर के कर्तृत्व की जो बात है, पर में जो कर्तृत्व बना है वो कुछ हमने सोचा और वैसा पर का कार्य हुआ तो हम मानते हैं हमने पुरुषार्थ किया, तो ये अज्ञानी की मान्यता। तो अज्ञानी जगत इसे ही पुरुषार्थ मानता, तो वह पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए। उनके लिए हमें लगता है हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा, तो हमारा जो उल्टा पुरुषार्थ चल रहा था वो कहाँ रहा, तो वो नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो तो टूटना ही चाहिए। जिसे हमने गलत माना था या जो हमारा उल्टा पुरुषार्थ चल रहा था वो टूट गया, छूट गया, तो क्या आफत आ गई, बीमारी थी वो बीमारी मिट गई, तो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ ना। तो क्या कहते हैं कि परकर्तृत्व के अहंकार की जो बात है, परकर्तृत्व के अहंकार को ही यह अज्ञानी जीव पुरुषार्थ मान रहा था और परकर्तृत्व को नहीं कहा, परकर्तृत्व के अहंकार को कहा, क्योंकि पर में उसका कर्तृत्व चला ही नहीं, अनादिकाल से नहीं चला और अभी कभी अनंत काल तक चलेगा नहीं, परंतु उस संबंधी अभिमान कर रहा है कि मैं पर का करता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान है, और उस अभिमान को ही इसने पुरुषार्थ माना। अज्ञानी का भी पुरुषार्थ कभी पर में चला ही नहीं, क्योंकि किसी एक द्रव्य का पुरुषार्थ दूसरे द्रव्य में चलेगा नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ वो हर एक द्रव्य की अपनी पर्याय है, वो उस अपने द्रव्य तक ही उसके लिमिटेड है, परम द्रव्य में उसका प्रवेश ही नहीं होता। हर एक का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है प्रत्येक द्रव्य का, तो उसका पुरुषार्थ भी अपने में होगा। अज्ञानी ने क्या माना, मैं पर का कर सकता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान किया, खोटा अभिमान किया और उसी को पुरुषार्थ माना, ये उसकी दूसरी और गलती। पहले तो पर का करता हूँ ऐसा माना, कर सकता हूँ, और दूसरी क्या गलती, यही मेरा पुरुषार्थ है ऐसा माना, तो ये जो उसका पुरुषार्थ है वो टूट गया, तो कहते कि वह पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं है, वह तो नपुंसकता है। कल हमने देखा था पुरुष की व्याख्या की थी, निकालो तो जो पुरुष नहीं वो तो अपुरुष हुआ, वो तो नपुंसक हुआ। देखो 70 पेज पर 70 में, तो पुरुष यानी उत्तम चेतना गुण में चेते यानी स्वामी होकर प्रवर्तन करे, संस्कृत शब्द चेते, हाँ हाँ, उसमें रहते हैं या उसमें प्रवर्तन करते हैं, वो आता है ना कमले कमला सेते हरित सेते हिमालय, ये संस्कृत श्लोक है। कौन कहाँ सोता है, वो कौन कहाँ रहता है, ऐसा सेते ने कहाँ रहता है। कमला ने लक्ष्मी है वो कमल में रहती है, विष्णु है वो वहाँ, वो अन्य मत की मान्यता है, वो शेष नाग में, हाँ। और कौन कहाँ रहता है, वो हरित सेते हिमालय, वो शंकर वो हिमालय में रहता है। तो चौथी लाइन मालूम है इसकी, ऐसा क्यों पूछते है, मन ने मत सुन संग्रह मालूम है। ऐसा लगता है कि आप क्या कह रहे, मत सुन ढेकुन, इसको क्या कहते हैं, तो संस्कृत ही श्लोक है कि ऐसा लगता है कि इनको उसकी भय है, उसका कहते वो माखन काटे नहीं, इसलिए वो वहाँ सोते ही वहाँ रहते हैं। ये सेते शब्द है, ये संस्कृत श्लोक ऐसे हमारे बहुत से, हाँ काव्य शास्त्र विनोद देना और स्कूल में हमें ऐसे बहुत याद थे। इन्हें पहले क्या कहते थे, ऐसे एक ही लाइन देते थे, राजे लोग थे ना तो अपने विद्वानों को एक लाइन देते थे, तो फिर वो विद्वान अपने मन से उसके ऊपर की 3 लाइन तैयार करते थे। ये भोज राजा की वगैरह ऐसी बहुत कथाएं होती है। ऐसे एक दिन अभी शंकर हो रहा है, राजा भोज को ऐसे ले रहा है कि ऐसे कोई 3-4 शब्द बता दिए, तक्रम चक्रस्य दुर्लभम, तक्रम यानी ताक, चक्र छाच, चक्र इंद्र और दुर्लभ, तो ऐसी 3 बातें बता दी। तो बोला कि अभी इसका काव्य बना दो, तो अभी सब लोग चिंता में पड़ गए, अभी क्या करे इसका। तो कालिदास आ गए, कालिदास और भोज राजा की ये कथाएं बहुत ऐसी, तो उसमें फिर उसमें चक्र, तो भोजन आंतर एक किस्म से भोजन के बाद कौन सा पेय लेना चाहिए, वो छात तो तक्रम और चक्रस्य, तो जयंत कस्य वही सुता, यानी जयंत ये किसका पुत्र है, तो कहा चक्रस्य यानी इंद्र का, और फिर दुर्लभ कथम, दुर्लभ क्या है इसमें, कुछ आता है पता नहीं, कौन सा पद प्राप्त करना कैसा है, ऐसा कुछ है उसमें, भोजनांतर जयंत कस्यम प्रथम, कोई पद प्राप्त करना कैसा है वो दुर्लभ है, ऐसे कोई बात है उसने, ऐसे उसने रचना कर दी। और फिर ये चौथा लाइन तक्रम चक्र से दुर्लभ है, ऐसे बहुत सारे श्लोक है। ये कहाँ से काम, ये सेते, आपने सेते शब्द पूछो ना, हाँ, तो पूर्व यानी उत्तम चेतना गुण में स्वामी होकर प्रवर्तन करे, यानी उसमें रहे, अपने ज्ञान स्वभाव में ही जो रहे, यानी ज्ञान रूप होकर जो प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं। और जो ज्ञान रूप प्रवर्तन नहीं करते हैं, तो हम कहते ना ये पुरुष नहीं है, संड है कहते हैं, नपुंसक है, तो वहाँ आई बात है, ये अपना जो अभी चल रहा था। कि वह सच्चा पुरुषार्थी नहीं था, जो परद्रव्यता कर्तृत्व का अहंकार मानता था और उसको पुरुषार्थ भी मानता था, तो वो सच्चा पुरुषार्थ नहीं था, तो वो क्या थे, वह नपुंसकता है। परद्रव्यता कर्तृत्व पने की जो बुद्धि है, बुद्धि मिथ्या अभिप्राय, और उसी को पुरुषार्थ मानना, ये तो नपुंसकता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से परकर्तृत्व का अहंकार भी न टूटा, तो समझना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में आई ही नहीं है। अपने आप को टटोलना है, अन्य किसकी बातें नहीं करना, वो ऐसा मानता है, वो ऐसा मानता है, ऐसा नहीं। मेरी मान्यता में परकर्तृत्व का अभिमान है क्या नहीं है, अभी है तो अभी क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय नहीं हुआ है, और अभी ऐसा लगता है कि अपने में ऐसी मान्यता नहीं है, तो जान लेना कि समय दर्शन हुआ है कि नहीं है। तो नहीं हुआ है तो अभी भी कहीं निर्णय में अभी खोट बाकी है। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल तो कर्तृत्व का अहंकार टूट कर अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ का जागृत होना ही है, यानी उसमें ही अंतर्मुखता हो जाती है, ये सहज है उसका, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया ना, तो उसके परिणाम सहज ही अंतरोन्मुखी होते, ये परसन्मुखता के परिणाम उसके टूटते जाते हैं। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है, वस्तुतः पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही उनकी समझ में नहीं आया। जैसे ये निमित्त के बारे में भी बहुत उलझने चलती है ना, तो निमित्त का भी उनको सही स्वरूप नहीं पता चलता। हर बात में ऐसे जो जो तत्व है, तत्व का सही स्वरूप नहीं समझने के कारण ही उस संबंध में भ्रांतियां भी चलती है, और उस संबंध अपनी मति कल्पना के लोग कुछ न कुछ बोलते जाते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो है ही नहीं है, और अपने मन से उसमें अपने बुद्धि लगा दो। देखो क्या कहते हैं, उसका पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही उनके समझ में नहीं आया।
सारे इसी के प्रश्न के उत्तर आ रहे, तो हमने तो परकर्तृत्व यानी पर में कुछ हम कर सके या पर्याय के फेरफार करे, अपनी भी फेरफार पर्याय में, पर की या अपनी कोई भी पर्याय फेर फेर करने ने उसको जगह उसकी जगह छोड़कर अपनी जगह में लाया ना, अभी इसी वर्तमान समय में या कुछ है वैसे छोड़कर कोई पलट कर अन्य करना, किसी को वो पुरुषार्थ समझते हैं, उन्हें सर्वप्रथम पुरुषार्थ के सम्यक स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए, या पुरुषार्थ नक्की है क्या, क्या चीज है, उसका भी उन्हें निर्णय होना चाहिए। हमारा विश्वास है कि उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का सही स्वरूप स्पष्ट होते ही उनकी शंका आशंका स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पुरुषार्थ क्या ये पता चलेगा तो वो प्रश्न उठेगा ही नहीं कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा। इसके बिना उक्त शंका का निवारण संभव नहीं है, अतः उनसे पुरुषार्थ के सही स्वरूप का गंभीरता से विचार करने का विनम्र अनुरोध है। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। देखो कार्तिकेय में परीक्षा में भी ये लगता है कि सर्वज्ञता तो धर्म की नींव है, वो तो उसी के आधार पर, सर्वज्ञता के आधार पर ही ये सारा जैन दर्शन खड़ा है, क्योंकि ये सारा आगम बताया ही सर्वज्ञ ने, और सर्वज्ञ ने कहीं अपने मन से उसकी कल्पना नहीं की है। जैसे अन्य मतियों ने कहते हमारा ये धर्म का संस्थापक है, संस्थापक यानी उनके जो तत्व है वो उस विशिष्ट जीव ने अपने मन से वो खड़े है, जैसे हमने भारत की घटना तैयार की किसी एक विशिष्ट व्यक्ति उसके आधार, वैसे किसी ने तैयार किए वो उसका यानी सच्चा दर्शन नहीं हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की या आदिनाथ ने स्थापना की, वो किसी ने इसकी स्थापना की ही नहीं है, जो वस्तु का स्वरूप है उसको बताया मात्र, यानी ये तो वस्तु का धर्म है, सारे ही वस्तुओं का धर्म है, और हम भी एक वस्तु है, और हमारा प्रयोजन अपनी वस्तु से है, अपनी वस्तु को जानते ही सारे अनंत वस्तुओं का ज्ञान उसमें गर्भित आ जाता है, हो जाता है, सहज हो जाता है, तो हमारा प्रयोजन अपनी वस्तु से है, इसलिए हमने अपनी वस्तु का जो अध्यात्म में जो बताते हैं आत्मा का कैसा स्वभाव है, उसको कैसे प्रकट करना, कैसे जानना, तो उसको क्या कहते हैं कि देखो यहाँ कि सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। सबसे पहले भी सिद्धांत प्रवेशी का आपने सीखी है, तो पहले दो लेक्चर तो सर्वज्ञ के हुए, अरे अब जीव क्या है, विश्व क्या है, उसके पहले सर्वज्ञ को यहाँ याद किया है, तो क्योंकि हम तो कोई भी शास्त्र पढ़ते तो कहते हैं अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ, यानी इस शास्त्र के इस ग्रंथ के मूल कर्ता जो है, मूल उपदेशक है, वो सर्वज्ञ के है, और फिर उनके उपदेश के अनुसार गणधर है, अन्य आचार्य है, वैसे आज तक हमको ये उपदेश प्राप्त हुआ है। इसलिए यह कहा है कि सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानते हैं। देखो सर्वज्ञ हमने कौन हो सकता है, कौन से गुणस्थान वाला सर्वज्ञ है? 13वें में सर्वज्ञता प्रकट होती है, तो उसके पहले कोई कंडीशन है कि सर्वज्ञ कौन प्रकट कर सकता है? सर्वज्ञ वीतरागी, तो पूर्ण वीतरागी ही सर्वज्ञ होता है। तो जो वीतरागी नहीं है वो सर्वज्ञ भी नहीं होगा। तो ये अन्य मति को हमने सारे वहाँ हटा दिया। अब यहाँ तो बात करते हैं कि सर्वज्ञ भगवान का द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से। तो उनका द्रव्य कैसा है, गुण कैसे है, वो सारे हम जो चर्चा करते हैं ना सिद्धांत में सिखाने, द्रव्य कैसा है, गुणों को समुदाय है, वो गुण कैसे अपने पर्याय रूप से प्रकट है वगैरह, ये सारी चर्चा है। तो उसमें ऐसा भी जानना कि जो वहाँ उनको जानकर अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय हम करते हैं, तो हम सर्वज्ञ स्वभावी है यह निश्चित हुआ। तो पर्याय में जो ऐसा हमने देखा था कि जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ होगा। देखो ये जरा नई बात है, जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ होगा। हमारा स्वभाव कैसा है? सर्वज्ञ स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव वीतरागी होगा कि नहीं होगा? सवाल ही नहीं है, क्योंकि जैसे पर्याय में सर्वज्ञ क्या वितरागता के बिना नहीं प्रकट होती है, तो यहाँ सर्वज्ञ स्वभाव है तो वितराग स्वभाव तो होना ही है यहाँ। तो हम भी स्वभाव से वितरागी, वितरागी कहने से भी अरागी कह सकते हैं। वितरागी में तो राग पहले था पर्याय में और फिर वो नष्ट होगा, तो हमने वीत गया है राग कहा वितरागी। तो यहाँ भी वितरागी कहो या अरागी, कभी स्वभाव को राग छुआ ही नहीं, ना बंध यहाँ हुआ ना मोक्ष हुआ, ऐसा ये स्वभाव है। तो जैसे स्वभाव की सर्वज्ञता का ख्याल आता है तो मैं स्वभाव से वीतरागी हूँ यह भी ख्याल आना चाहिए। तो मैं स्वभाव से वीतरागी हूँ तो यह अभी राग द्वेष में मेरा स्वामीपना रहेगा क्या? देखो ये अपने ये ऐसे विचारों में ले लेकर हमको इसको निर्णय करना है कि सर्वज्ञ स्वभाव है मेरा तो वीतरागी भी मेरा स्वभाव होना ही चाहिए, क्योंकि वितरागता के बिना सर्वज्ञता होती ही नहीं करती। तो मैं भी स्वभाव से वितरागी हूँ और मैं भी स्वभाव से सर्वज्ञ हूँ। तो ऐसा जब हमने मान लिया तभी जो पर्याय में अधुराश है, ज्ञान की अपेक्षा अधुराश है, और अभी जो वितरागी की अपेक्षा यहाँ पर्याय में राग द्वेष है, तभी उसका स्वामित्व हमारे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनत्व स्वभाव में स्थापित कर लिया। पर्याय का इनकार नहीं है, पर्याय को गौण करके हम अपना अपनत्व यानी अपना अहम स्वभाव में स्थापित कर रहे, तो स्वभाव से हम वितरागी और सर्वज्ञ है। पर्याय में अभी है अधुराश है, ज्ञान की अल्पज्ञता है और राग द्वेष भी है। अभी हमने अपना पूरा पूरा अहम स्वभाव में स्थापित किया, तो पर्याय में जो है तो उसको गौण कर दिया ना, तो मैं राग द्वेष वाला और अधूरे ज्ञान वाला हूँ ही नहीं है। तो फिर उसका उस राग द्वेष से अपने को कम ज्यादा मानना या उस विशिष्ट ज्ञान पर्याय से अपने को अधिक कम मानना, कोई मतिमंद होगा तो अपने को हीन मानता है, और कोई थोड़ा अधिक सूक्ष्म है तो अपने को बुद्धिमान बहुत है, मैं अन्य से बहुत बड़ा हूँ, तो ये उसको नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपने पूरा स्वभाव ही अपना तो स्थापन कर लिया, अहम स्थापित कर लिया है। तो पर्याय में जितनी कुछ होगी बुद्धि, उसमें तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि जो है उसमें तो उसका अपनत्व नहीं रहा, उसमें अहमपना नहीं रहा। पर्याय अपनी है वो जानता है, पर्याय में अधुराश है उसको भी जानता है, पर्याय में राग द्वेष है उसको भी जानता है, परंतु उस रूप मैं हूँ ऐसा नहीं मानता है। क्योंकि मैं किस रूप हूँ तो मैं स्वभाव रूप हूँ, तो मैं स्वभाव से वितरागी और सर्वज्ञ हूँ, और ये पर्याय में है क्योंकि वो ज्ञान का कार्य है, पर्याय को भी जानेगा, तो पर्याय में अभी है परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे उसको पर्याय से और वो राग द्वेषों से स्वामित्व छूट जाता है, इसीलिए उसका मद भी ये सम्यक दृष्टि को, जो ये ज्ञान का मद नहीं होता, इसका नहीं होता, ये सारी बातें आती है ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें उसका अहमपना ही नहीं रहा। तो जो चीज अपनी है ही नहीं उसका क्या मद करे? हमारे कंपाउंड में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, हमको उस संबंधी मद होगा अभिमान, अरे मैं इतने गाड़ी वाला हूँ, अरे वो अपनी है ही नहीं है जिसकी उसकी है, तो हम क्यों उसका अभिमान करें? वैसे सम्यक दृष्टि ने स्वभाव में हम पूरा स्थापित कर लिया, तो वो पर्याय संबंधी उसको मत कैसे होगा? वो तो अकेले जानते ये पर्याय है, परंतु मैं तो स्वभाव रूप हूँ, ऐसे पूरा उसने वितरागी सर्वज्ञ स्वभावी स्वरूप में अपना अपनत्व स्थापन करने के बाद वो पर्याय संबंधी मत उसको नहीं होता। पर्याय का ज्ञान अवश्य होता है। जो मुनि है वो तो जानते हैं ना कि मेरी अवस्था इस रूप चल रही है, अभी इतनी मुझे वितरागता और इतना निर्मलता आ गई है, ऐसा जानेंगे वो, परंतु उस संबंधी अभिमान नहीं होगा। आचार्य कुंद अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, जो जानदि अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयत्ते हिम सो जानदि अपानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। यानी जो अरहंतों को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं। देखो सो जानदि यानी वे जानते हैं, अपानम यानी आत्मा को, तो क्या होता है, मोहो खलु जादि तत्सलयम, उनका खरेखर मोह लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किसको जानने से, सर्वज्ञ को जानने से, यानी जिससे सर्वज्ञ को जाना उसने अपने को जाना, और जिससे अपने को जाना उसका मोह रहा ही नहीं, मिथ्यात्व चला गया उसका। जो जीव अरहंत अर्थात सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है और उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त हो जाता है। इस गाथा में मोह को जीतने का उपाय बताया गया है। देखो कोई भी गाथा, कोई भी शास्त्र निकाल के देखना, उसका सार तो वितरागता ही है, और यहाँ भी मोह का नाश कैसा हो जाए उसकी बात करते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल रूप से तो यह कहा गया है कि जो आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट होता है। दूसरी लाइन में बताया ना कि जो आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है, ये तो मेन बेस। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। यानी मिथ्यात्व तो किसका नष्ट होगा, जो अपने आत्मा को जानेगा उसका मिथ्यात्व तो नष्ट हो जाएगा। और ऊपर क्या बताया, जो अरहंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के नाश के लिए अरहंत भगवान को जानना भी अनिवार्य कर दिया है। मात्र अरहंत को नहीं अपितु उन्हें द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानना अनिवार्य कहा है। हम अरहंत को जानते हैं क्योंकि रोज हम उनको नमस्कार करते हैं, वो जानना जानना नहीं, वो खाली देखा और नमस्कार किया, वो अरहंत को जानना नहीं है। तो अरहंत का द्रव्य कैसा है, गुण क्या है, कैसे है, पर्याय किस तरह से हुई है उनकी, ये सारा जानना ये अरहंत को जानना है। अपने आत्मा और अनंत भगवान के द्रव्य गुण तो एक समान ही शुद्ध है। जैसे उनका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, उनमें अनंत गुण है ज्ञानादि, मेरे में भी ज्ञानादि अनंत गुण है, उनके असंख्यात प्रदेश है, मुझ में कुछ कम है, मैं भी उतना वैसा ही है, उनकी भी हर समय एक एक पर्याय हो रही है, हर एक गुण की मेरे भी हो रही, वो भी कैसे उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है और मैं भी वैसा हूँ, उनमें भी एक एक समय में एक एक पर्याय का उत्पाद पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, मेरे में भी वैसा हो रहा है। तो इसे अपने में समानता क्या, इसको भी पहले जाने ना, अपनी अल्प अभी क्या है, द्रव्य गुण तो एक समान शुद्ध है पर वर्तमान पर्याय में अंतर है, ये वर्तमान पर्याय का भी विवेक करना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा, उसको कहते विवेक। क्योंकि हम वो समान है, हम भी समान है, हम उनके क्यों दर्शन करें, क्यों उनके पगे पड़े, उनके चरण क्यों नमस्कार क्यों करते उनको, तो ये पर्याय का विवेक होता है। और पर्याय का विवेक अगर नहीं रखेंगे तो किसको नमस्कार करना, क्या करना, किसको कितनी विनय करना, ये बातें भी सब गड़बड़ हो जाएगी। अपनी पर्याय अल्प विकसित और अशुद्ध है, उनकी पर्याय पूर्ण विकसित और शुद्ध है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य देव ने पूर्णता और शुद्धता जानने को कहा है, उनकी पूर्णता और शुद्धता का भी ज्ञान करना है हमें। इस तरह उन्होंने पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता के ज्ञान को मोह के यानी मिथ्यात्व नाश के लिए अनिवार्य माना है। किसको, पूर्ण वितरकता और सर्वज्ञता का जो ज्ञान है, ये कंडीशन है, इसको जाने बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। यही कारण है कि आत्मानुभूति के साथ साथ सच्चे देव गुरु शास्त्र की सम्यक पहचान भी सम्यक प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। ये चार बातें बताते हैं ना, कि देव गुरु शास्त्र की प्रतीति यानी उसमें ये सारा आ गया कि उनकी पहचान, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति, फिर स्व पर भेद विज्ञान, स्व कौन और पर कौन, और फिर आत्मानुभूति, ये चार ही बातें समय दर्शन में ये सारी कर दी। इसके बिना समय दर्शन नहीं होगा। तो जिसको समय दर्शन करना है वो चारों ही बातें होती है उसकी, जिसको होती है, परंतु अभी जिसके इसमें प्रवेश हुआ है उसको क्या कहते, पहले तुम सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रतीति करो, उनका प्रतीतिकरण, उनका निर्णय करो, अपने ज्ञान में उनका सही स्वरूप जानो, इसको कहते निर्णय करो या प्रतीति करो। जाके भगवान के सामने चरण छूना या गुरु के सामने जाकर ढोक देना, इसी को अकेले देवगुरु शास्त्र की प्रतीति नहीं कहते। उनका सही स्वरूप का निर्णय करना, ये है प्रतीति। फिर कहते वो सात तत्व की ज्यों श्रद्धा, यानी वो जीव तत्व कैसा है, कौन सा आचरण तत्व करने योग्य है, कौन सा जानने योग्य है, कौन सा है ही है, कौन सा प्रकट करने योग्य है, ये सारा ही ज्यों का ज्यों श्रद्धा, ये सारी बातें होंगी आप। तो ये हुआ सात तत्वों का यथार्थ सच्ची प्रति। और फिर स्वपर भेद विज्ञान, ये तो सब चलता ही रहेगा मन में, मैं कौन हूँ, ये मेरे में किस किस को रखना, पहले तो शरीर ये मैं हूँ मानता था, राग द्वेष में ये मेरे है, ये अपनत्व मानता था, तभी ये स्वभाव में अहम स्थापित कर दिया, तभी ये जो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसका जो पुद्गल का स्वभाव में अपनापन था, अभी वो छूट गया, उसका अपना ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञानादि में अपनत्व आ गया, तो स्व कौन और पर कौन, इस संबंधी उसका ये विवेक, उसका विचार चलता रहता है। और फिर आत्मानुभूति, यानी अभी पहले तो ये मैं नहीं जाना और ये मैं हूँ ऐसा जाना, फिर जो मैं नहीं उसको क्यों जानते रहना, तो उसका उपयोग छूट कर अपने आत्मा को पकड़ लेता है, उसको कहते हैं आत्मानुभूति। तो ये चारों ही बातें आती है। तो यहाँ पहले लिखा है ना, आत्मानुभूति के साथ साथ सच्चे देवगुरु शास्त्र की सम्यक पहचान भी सम्यक प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, यानी उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, अनिवार्य कहा है, खाली जानना ठीक है, जान लो तो ठीक, नहीं जानो तो ठीक, ऐसा नहीं कहा, उसको जानना बिल्कुल जरूरत है, उसके बिना सम्यक तो होगा ही नहीं। इसे नहीं, आप खाली जैनियों ने ठेका लिया है समय दर्शन का, अन्य मति को क्यों नहीं हो सकता। तो अन्य मति अगर अपनी श्रद्धा सम्यक कर लिए, सम्यक पहचान कर लिए कि देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप ऐसा ही होता है, भले जन्म से वो किसी भी कौम में किसी भी संप्रदाय में जन्मा हो, वो कोई मायने नहीं रखता, उसको अगर देव गुरु शास्त्र की सच्ची पहचान हो जाए तो उसका कार्य बन सकता है। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, लक्ष्य यानी उसका हम लक्ष्य करें ना, एम, प्राप्तव्य ने प्राप्त करने योग्य आदर्श है, उसे प्राप्त करने के लिए ही सारा यत्न है, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप के परिज्ञान बिना उसे प्रारंभ करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है। हाँ सर्वज्ञता, उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है, क्या कहते हैं, सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, तो हम स्वभाव से सर्वज्ञ स्वरूपी है, पर्याय में अधूराश है, तो हमारी ऐसी भावना है कि पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट हो, तो जिसे प्रकट करना है उसका स्वरूप तो ख्याल में आना चाहिए, तो बिना उसका स्वरूप ख्याल में आए हम कैसे प्रकट करें। तो क्या कहते कि वो हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, आदर्श है, और उसे प्राप्त करने के लिए ही सारा यत्न कर रहे हैं हम, शास्त्र साध्य कर रहे हैं अभी, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप के परिज्ञान बिना, यानी सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप जाने बिना उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है, यानी उसका सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। प्राप्त करने का मार्ग आरंभ होना यानी सम्यक दर्शन होना, तो क्या कहते हैं, जिसे प्रकट करना है, फाइनल है वो, अभी तो समय दर्शन प्रकट करो, बाद में सर्वज्ञ का सोचेंगे, ऐसा नहीं। जिसको फाइनली अचीव करना है उसको सबसे पहले उसका निर्णय करना पड़ेगा, उसके बिना वो मार्ग भी शुरू नहीं होगा। मोक्ष प्रकट करना है तो मोक्ष का स्वरूप निश्चित किए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, एक कदम भी उसके ऊपर रख नहीं सकते मोक्ष मार्ग पर। जैन दर्शन का मूलाधार यानी मूल आधार सर्वज्ञता ही आज संकट में पड़ गई है। क्यों? सर्वज्ञ संकट में आ गए क्या? हाँ, सर्वज्ञता का सर्वज्ञता संकट में आ गई यानी क्या कि लोगों के समझ में ही नहीं आ रही है सर्वज्ञता क्या है। हमारे कुछ धुरंधर धर्म बंधु पक्ष व्यामोह में यानी अपने अपना अभी जो पक्ष माने ना, ये हमारी पार्टी है तुम्हारी पार्टी, पार्टी बना ली, पार्टियां बना ली, तो उसमें इतने उलझ गए हैं कि सर्वज्ञता में भी मीन में एक निकालने लगे हैं। यानी वो सर्वज्ञता भी ऐसी है वैसी है उससे, उसी पर अभी टीचर उछाल रहे हैं कि वो भविष्य को ही नहीं जानते हैं, नचल से जानते हैं, ऐसा है वैसा है। आचार्य समन्त भद्र को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए ही कहा गया था कि उन्होंने कलिकाल में डंके की चोट पर सर्वज्ञता की सिद्धि की थी, सर्वज्ञता सिद्ध की थी। ऐसे नहीं वो कलिकाल के सर्वज्ञ थे, ऐसा नहीं है। कलिकाल ने पंचम काल, ये अन्य लोगों में ये है ना, कलिकाल कहते इसको। यानी ऐसा ये जो दुष्म काल है इसको कलिकाल कहते, कि इस काल में सर्वज्ञ को मानने वाले नहीं रहे ना। ये तो जब समन्त भद्र हुए थे तभी की बात भी ऐसी थी कि सर्वज्ञता पर ही भरोसा नहीं था लोगों का, तो उन्होंने इस कलिकाल में ऐसे जो पंचम काल जैसे वातावरण में भी सर्वज्ञता की सिद्धि कर बिल्कुल लोगों के गले उतारा, ये ऐसे ऐसे लॉजिक बताकर कि सबको हाँ मानना ही पड़ा, नहीं सर्वज्ञ है, इसीलिए उनको कहते कलिकाल सर्वज्ञ। उनको सर्वज्ञ नहीं कहा, कलिकाल में सर्वज्ञ की सिद्धि की, ऐसे ही आचार्य है इसलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा। वे कोई स्वयं सर्वज्ञ नहीं थे, वे पाई वाला थे, पर उन्होंने कलिकाल के जोर से संकटापन्न सर्वज्ञता को, यानी ये पंचम काल का जोर है, अभी काल के ऊपर आरोप करके बताया ये काल की ऐसी महिमा है, तो संकटापन्न यानी संकट जिस पर आया है ऐसी सर्वज्ञता, संकट आया यानी सर्वज्ञता का लोप, सर्वज्ञता मानने से ही लोगों ने इनकार करना शुरू किया है, इसलिए उसको क्या किया उन्होंने पुनर्स्थापित किया, यानी लोगों को ऐसा भरोसा दिया, ज्ञान कराया कि सर्वज्ञता भी है, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। आज फिर कलिकाल जोर मार रहा है, आज युग को फिर एक समन्त भद्र चाहिए जो डंके की चोट पर सर्वज्ञता को सिद्ध कर सके, पुनः स्थापित कर सके। फिर एक समन्त भद्र चाहिए नहीं, वो समन्त भद्र फिर दोबारा जन्म ले, ऐसी बात नहीं है, ये तो कहने की बात है कि फिर एक समन्त भद्र चाहिए। मोह का नाश कर आत्मश्रद्धा ज्ञान और आत्मलीनता के इच्छुक जनों को अनंत पुरुषार्थ पूर्वक मरपथ के भी, यहाँ कहते ना मरकर के भी, अमृतचंद्राचार्य ने कहा, वो कहते अई यानी अत्यंत कोमल संबोधन करते लोगों को, अई कथम अपि मृत्वा, कैसे भी मरकर भी तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहली हो यानी तत्व में थोड़ी उत्सुकता जगा, कुतूहल पूर्वक उसको जान, मरकर भी कहते, तो क्या कहते हैं कि मरपथ कर भी सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना चाहिए। मरुण्य ने हम कहते हैं ना, कैसे भी कितना भी कष्ट हुए तो भी, कितना भी आपको कष्ट करना पड़े, एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑल्सो, ऐसा फर्स्ट ऑफ एनी थी, तो इसको कहते हैं मरपथ कर भी, मरेगा तो कौन निर्णय करेगा, हाँ एक तक ऐसा भी नहीं, यानी कुछ भी हो ये कार्य अवश्य कर। तो भी आता है ना वो छड़ा लगे लाख बात के बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सफल जग दंड पंद जग के सारे दंड पंद छोड़कर नित आत्म ध्याओ। माता आत्मा की बात कि जगत के सारे द्वंद पंद छोड़कर आत्मा का ध्यान करो। और यहाँ कहते हैं मरपच कर भी यानी मरण प्राय कष्ट सहन करके भी हम कहते हैं ना वो मरण योग्य करके भी हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो देश की रक्षा कैसे करते मर कर भी अपने देश की रक्षा करते तो वो महान हो जाते। तो ऐसे यहाँ क्या कह रहे कि सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना यानी अन्य कुछ नहीं करो तो चलेगा ये सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना। सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय समाहित है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे में एक के निर्णय में दूसरा ही समाहित हो जाता है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर ही होता है। हमको सर्वज्ञ का निर्णय करना सर्वक्रमबद्ध का निर्णय करना कैसे होगा अकेले शास्त्र पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर नहीं होगा। तो ज्ञायक स्वभाव के अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर ढल कर तो उसको कहते हैं ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर ही होता है ही लगाया। और ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता ही मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है। किसको कहा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिष्ठा चढ़ाला में आता है ना। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कौन सी है इंदुबेन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। हाँ तो क्या कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता अरे उसके सन्मुख बिना उसको जानेंगे कैसे। और उसकी सन्मुखता कहो आत्मा का अनुभव कहो सम्यक दर्शन कहो एक ही बात है। तो ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता ही मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है। उस पर आरोहण का अनंत पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में समाहित है। यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना यह अनंत पुरुषार्थ है। देखो क्योंकि वो क्रमबद्ध पर्याय की पुरुष निर्णय में दृष्टि पर्याय की ओर नहीं दौड़ती दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करती। पुरुषार्थ भी पर्याय है उसका भी लक्ष्य छूट जाता है। पुरुषार्थ हो रहा है और उसका लक्ष्य छूट रहा है देखो यही अनंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी पर्याय है और वो पुरुषार्थ का भी लक्ष्य उसकी ओर का भी लक्ष्य छूट जाता है उसके विचार भी छूट जाते हैं और अपने ज्ञायक स्वभाव को पकड़ लेते हैं वही तो अनंत पुरुषार्थ है। यानी पुरुषार्थ का लक्ष्य छोड़ने में अनंत पुरुषार्थ हो गया पर्याय का लक्ष्य छोड़ने में अनंत पुरुषार्थ हो गया। सच्चा पुरुषार्थ हो रहे ना क्या सच्चा पुरुषार्थ अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करना अपने ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होना उपयोग वहां पर चले जाना यही अनंत पुरुषार्थ है। क्या कहते हैं कि हाँ उस पर आरोहण का अनंत पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में समाहित है। इस प्रकार सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय एक प्रकार से परस्परानुबद्ध है परस्पर अनुबद्ध यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का निर्णय निर्णय ने सच्ची समझ उसकी उसमें श्रद्धा ज्ञान दोनों ही गर्भित होते समझ में। एक का निर्णय दूसरे के निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का ही निर्णय सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के सन्मुख होकर होता है। देखो सर्वज्ञ का निर्णय कैसे होगा अपने स्वभाव के सन्मुख होकर। क्रमबद्ध का निर्णय कब होगा अपने स्वभाव के सन्मुख होकर। इसलिए क्या कहा दोनों का ही निर्णय कैसा निज आत्मा तो सर्वज्ञ स्वभाव क्योंकि ये सर्वज्ञ वे होंगे परंतु यहाँ अपना सर्वज्ञ स्वभाव है ना तो उसकी ओर दृष्टि करने से उनका निर्णय हो जाता है। तो दोनों का ही निर्णय सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के सन्मुख होकर होता है। यदि कोई व्यक्ति परोन्मुखी वृत्ति द्वारा परोन्मुखी ने पर की ओर वो कोई अरिहंत भगवान है महावीर नाम के उनकी ओर देखकर उसको कहते परोन्मुखी वृत्ति। तो परोन्मुखी वृत्ति द्वारा सर्वज्ञता या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने का यत्न करे तो वह कभी सफल नहीं होगा। सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। देखो कितना आसान है, हमको सर्वज्ञता जैसे एक महान कार्य प्राप्त होना है, महान फल प्राप्त होना है, और उसका उपाय कितना सरल है, सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। ये समझने के लिए ज्ञान तो अपने पास है ही, और सर्वज्ञता स्वरूप बताने वाले आचार्य के ग्रंथ भी उपलब्ध है, उनका उपदेश भी प्राप्त है, तो इसमें अभी क्या कठिनाई रही। सर्वज्ञता हमको मिल रही है, कितने छोटे से प्रयत्न पर सर्वज्ञता स्वरूप निश्चित करना है। तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है, जिस प्रकार जब तीर्थंकर किसी माँ के गर्भ में आते हैं तो उसके पूर्व स्वप्नों में आते हैं। ये माता के 16 स्वप्न आते हैं ना, पंच कल्याणक कभी देखा होगा, गर्भ कल्याणक में दिखाते हैं सारे। उसी प्रकार जिस आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट होती है, जो केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं, प्रकट होने के पूर्व उसे वह समझ में आती है, वह सपने में आती है, यह सपने की बात नहीं है, समझ में आती है। सर्वज्ञता समझ में आए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। तो बस सर्वज्ञता को समझना है हमको, यही अनंत पुरुषार्थ है, और वो भी सहज है, क्योंकि अपना सर्वज्ञ स्वभाव है। स्वभाव अगर नहीं होता और उसको हमको मानना पड़ता तो डिफिकल्ट था। अभी जो स्वभाव है उसका स्वरूप कैसा है वही तो समझना है। अभी तो सर्वज्ञता समझ में ही नहीं आ रही है, प्रकट होने की बात ही कहाँ है। सर्वज्ञता की समझ बिना, स्वीकृति बिना, वो अपने दिल से उसका स्वीकार किए बिना, यानी उसके अस्तित्व में हाँ ऐसा अंदर से आता है, सब उसके बिना धर्म की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। ये धर्म की उत्पत्ति कहाँ, पहले मोक्ष में है कि पहली सीढ़ी कहाँ था, एक ही बात है सारी। धर्म की उत्पत्ति को वितरागता की उत्पत्ति को शुद्धि की उत्पत्ति को एक ही बात है, उसी को सम्यक दर्शन कहा है, उसी को आत्मानुभव कहा, उसी को सम्यक ज्ञान कहा। तो फिर उसकी स्थिति वृद्धि और पूर्णता का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। ये रत्नकरण शावकाचार में श्लोक है कि कहीं बीज बोए बिना हम उस वृक्ष की स्थिति है, जिसकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि कैसे संभव है, वैसे सम्यक दर्शन बिना यानी सर्वज्ञता की समझ बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, यानी वो धर्म का बीज बोए बिना, सम्यक दर्शन के बिना धर्म की उत्पत्ति, धर्म की स्थिति यानी धर्म का चालू रहना, वितरागता की टिकते रहना, और उसकी वृद्धि और पूर्णता यानी मोक्ष का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। समझे ना, यानी ये सारा जो धर्म कहते हैं हम, जिसको वितरागता कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, सम्यक दर्शन से होगी। वो टिकेगा कैसे, आत्म सन्मुखता रूप वो पुरुषार्थ द्वारा ही टिकेगा। उसमें वृद्धि कैसे होगी शुद्धि की, वो भी आत्म सन्मुखता से होगी। और पूर्णतः ने मोक्ष कैसा होगा, वो भी ये ज्ञायिक स्वभाव के सन्मुखता से ही होगा। तो पहले आत्मा का स्वरूप समझे या सर्वज्ञ का स्वरूप समझे की बात है, उसको समझ कर उसको ही जानते रहना है और कुछ नहीं करना है। इतना सरल मार्ग है। सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा भी संभव नहीं है, क्योंकि सच्चे देव का तो स्वरूप ही सर्वज्ञता और वितरागता है। शास्त्र का मूल भी सर्वज्ञ की वाणी है, अभी बताया ना, मूल कर्ता तो सर्वज्ञ देव है, क्योंकि शास्त्र उन्होंने ही बताए। गुरु भी तो सर्वज्ञ कथित मार्गानुगामी, मार्ग अनुगामी, मार्ग आचरण करने वाले फॉलोअर, सर्वज्ञ कथित मार्गानुगामी होते हैं, यानी जो सर्वज्ञ ने मार्ग बताया है उस पर चलने वाले ही तो गुरु है। साधुओं को आगम चक्षु कहा है, कल बात आई थी ना कि हम तो इंद्रिय चक्षु है, देव तो है अवधि चक्षु, और ये गुरु आगम चक्षु। सर्वज्ञ कथित मार्ग का निरूपण शास्त्रों में है, शास्त्रों की प्रामाणिकता के अभाव में गुरु का स्वरूप भी स्पष्ट कैसे होगा, यानी शास्त्रों की प्रामाणिकता अभाव में, यानी कोई नहीं, अभी तो शास्त्र भी स्वयं मनगढ़ंत शास्त्र रहती है, तो शास्त्र प्रामाणिक हो गए, प्रामाणिकता यानी वो प्रामाणिक यानी वो जो सच्चा स्वरूप शास्त्र में कहा गया है उसका ही हमें पता नहीं है, तो गुरु का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं होगा। तो अभी जो समाज में चल रही है, अन्य अन्य कोई अपने को गुरु मनवाता है और कोई उनको गुरु मानता है, या गुरु संबंधी में जो अनेक मिथ्याएं भ्रांतियां चलती है, तो अतः देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सच्चा स्वरूप समझने के लिए सर्वज्ञता का स्वरूप समझना अति आवश्यक है। एक सर्वज्ञता को लेकर उन्होंने सारे को ही सिद्ध किया। सर्वज्ञता को सच्चे समझो कहो या सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय कहो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो सर्वज्ञ है वो वितरागी भी है, तो जो वितरागी सर्वज्ञ है वही देव है, वो हुआ सच्चा देव का स्वरूप। और ये सच्चे देव की जो वाणी है वही हुआ सच्चा शास्त्र, और उस शास्त्र के उपदेश के अनुसार जो चले, उनका उपदेश है ना सम्यक तो प्राप्त करना, फिर रूपांतरण में वृद्धि करना ऐसे शुद्धि की, और ऐसे विशिष्ट स्टेज पर आए तो वो मुनि उनका धर्म प्रकट हुआ, तो बाह्य में भी उनके ऐसी प्रवृत्ति रहती है सहज, तो ऐसे जो मुनि है उनका भी स्वरूप हमें स्पष्ट प्रतिभाषित हो जाता है। तो ये सारा सर्वज्ञ का ही सर्वज्ञता के ही आधार पर इनकी भी सिद्धि हम कर लेते हैं। इसलिए तो तार्किक चक्र चूड़ामणि यानी तर्क से इन्होंने सारे सिद्धांत बताए थे, लॉजिकली प्रूव कहते ना, तो ऐसे जो उसमें जो माहिर ऐसे आचार्य समंत भद्र ने देव शास्त्र गुरु की सम्यक श्रद्धा को सम्यक दर्शन के स्वरूप में शामिल किया है। उन्होंने जो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन की है उसमें उन्होंने कहा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन, जैसे अन्य भी परिभाषा आती है ना तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन, कि तत्वार्थों का सही श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। और इन्होंने कहा देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। तो अभी हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो कौन सा वाला करेंगे? हाँ, तो दोनों में कैसे कैसा दोनों का मेल कैसा बिठाना? एक बात कैसे बताओ ना, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान कहो या सात तत्वों का श्रद्धान कहो। हाँ, तो उसमें देव में शास्त्र में गुरु में वो बैठाओ ना, सात तत्वों का श्रद्धान या देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, एक कैसा है? ये मानने की बात नहीं है, कौन से तत्वों में कौन सा देव कहाँ कौन से तत्व में आया, गुरु कहाँ आया, शास्त्र कहाँ आया, ये सारा। हाँ अजीव में, हाँ, और सभी आया अजीव में, आगे जानने की क्या है, सारे ही तत्व जीव अजीव में आ गए। हाँ तो क्या हुआ, सात तत्व की जानने की क्या जरूरत है, बस दो ही तत्व जानते हैं। क्यों, सारे देवों को डाल दिया हमने अजीव तत्व में, तभी रहा कौन अभी, मैं और पर इसमें सारे ही आ गए। हाँ तो मेरी किसमें डालेंगे देखो ये तो द्रव्य तत्व हुए, जीव अजीव तो द्रव्य तत्व हुए, पर इनके पर्याय भी है ना, ये सारे अन्य तो पर्याय तत्व है। तभी जो मोक्ष तत्व है तो मोक्ष तत्व का सही स्वरूप जानेंगे तो हम देव का स्वरूप समझ में आता है, यानी मोक्ष तत्व की सच्ची श्रद्धा में देव की सच्ची श्रद्धा कर दी है, इसकी श्रद्धा और उसकी श्रद्धा लेना। अकेले मोक्ष तत्व में भगवान को नहीं डालना, भगवान तो हमने वो जो भगवान जो है वो व्यक्ति है उसको तो हमने अजीव तत्व में शामिल किया, परंतु मोक्ष तत्व का स्वरूप हमने जाना, तो ऐसा प्रकट किसके है, तो देव में है, तो देव की श्रद्धान में मोक्ष का श्रद्धान, ये इनके श्रद्धा में उनका श्रद्धा नहीं चलेगा। अभी गुरु में क्या है, संवर निर्जरा है, तो संवर निर्जरा के श्रद्धान में गुरु संबंधी श्रद्धा, वो दोनों ही इक्वल है। अभी सातों तत्वों का स्वरूप कहाँ बताया है, किसमें लिखा है, तरह शास्त्र में ही तो लिखा है, तो सातों तत्वों का श्रद्धान कहो या शास्त्र का श्रद्धान करो, क्योंकि शास्त्र में ही सारे तत्वों का स्वरूप कैसा है, उसमें भूल क्या क्या होती है, उसको टालनी कैसी है, उसका उपाय क्या है, ये सारा शास्त्र में ही तो लिखा है, इसलिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहो या सात तत्वों का श्रद्धान कहो, एक बात ऐसा उसका सारा ही लेना है ना। देखो ये क्या लिखते हैं यहाँ, एक ये श्लोक पर फिर बंद करते, तो इसलिए वे क्या करते कि वे लिखते हैं, वहाँ लिखा ना कि तार्किक चक्रचूड़ा में आचार्य समंतभद्र देव ने देवशास्त्र गुरु की सम्यक श्रद्धा को सम्यक दर्शन के स्वरूप में शामिल किया है। वे लिखते हैं श्रद्धानम परमार्थानम आप्त आगम तपोभूतम त्रिमूढ़ अकोढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। यानी सम्यक दर्शन किसको कहा उन्होंने कि परमार्थ से जो सच्चे आप्त यानी अरियंत भगवान, आगम यानी शास्त्र और तपोभूत यानी मुनि, इनका जो श्रद्धान है वो अकेले श्रद्धान नहीं, हम कहते हम भी उनकी श्रद्धा करते ऐसा नहीं। त्रिमूढ़ तीन मूर्ता से रहित, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, इनसे रहित त्रिमूढ़ा पोढ़ अष्टांगम और अष्टांग सहित, ये आठ अंग जो है ना, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा वगैरह, वो सारे आठ अंग सहित, तीन मूर्ता रहित और आठ अंग सहित जो सम्यक दर्शन है वो क्या है कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है। देव मूर्ता, देव संबंधी मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ये सारे अभी रत्नकरण शावकाचार में डिटेल में आने वाली बातें है सारी। अभी तो आज का समय हो चुका है, अभी हम देखो ये दो दो लाइन आगे की पढ़ते, तीन मूर्ता और आठ मद रहित, ये अपोढ़ में आया, आठ मद रहित और आठ अंगों सहित सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। ये जो चौथा श्लोक है ना रत्नग्रहण शावकाचार में, अभी आपका मोक्ष शास्त्र समाप्त होते ही ये रत्नग्रहण शावकाचार शुरू होगा और उसमें ये सारे बहुत डिटेल से बातें आने वाली है पूरी। अभी तो समय हुआ तो कल थोड़ा इस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे कि तीन मूर्ता कौन से, आठ मत कौन से और आठ अंग उनके नाम, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, यानी जो मूड ऐसे विपरीत ऐसी चाली रीति चलती है ना, लोक मूर्ता मान्यता है। अभी ये गंगा नदी पर जाके कितने लोग रो जाता ना, इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया और उसमें धर्म माना, ये हुई लोक मूर्ता। ऐसे बहुत सारी मूर्ता है,